नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की 500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप की पहल की है। युवाओं को अनुभव और अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को लगातार अस्थायी सरकारी नौकरियां दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा की नवगठित सरकार ने 26,000 युवाओं को रोजगार दिया है। देश में 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल और 1,400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो नवनियुक्तों को विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी सेवा के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज चेन्नई में नवनियुक्त कर्मियों को 150 नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार योजना पर श्री मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख युवाओं को नियुक्त करना है। श्री मुरुगन ने कहा कि देश के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए सड़क, रेल और हवाई बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत एक महाशक्ति बनेगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा नई दिल्ली में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सभी नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया। इससे सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक पंचकर्म अस्पताल, दवा निर्माण के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक खेल चिकित्सा इकाई, एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक आईटी और स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्र और 500 सीटों वाला एक सभागार शामिल है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक जनऔषधि केंद्र भी शामिल होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और उड़ीसा के बरबड़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM के तहत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स में कई सुविधाओं और सेवा विस्तार की आधारशिला रखी। कलाकारों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने इन कलाकारों की कला प्रदर्शनी भी देखी। कलाकृतियों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का शाश्वत संबंध इसमें प्रतिबिंबित हुआ है। उन्होंने लोगों से इन कलाकारों की सृजनात्मक कला की प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। ये कलाकार सृजन पहल के तहत इस महीने की 21 तारीख से राष्ट्रपति भवन में ठहरे हैं। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए विभिन्न कला विधाओं में सुंदर चित्र बनाए हैं। आज धनवंतरी जयंती है, इस धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा और 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव आज से ही आरंभ हो जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर सोना चांदी पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने की प्रथा है। धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आज ही 9वां आयुर्वेद दिवस भी मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करना है। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। कई देश इस वर्ष आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक विशेष कोड भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और आयुर्वेदिक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि भगवान धनवंतरी के आशीर्वाद से सभी का जीवन स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि से संपन्न रहे। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने वर्तमान भू राजनीति की जटिलताओं, इसकी चुनौतियों, संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान श्री जयशंकर ने आग्रह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा पर इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 3 हो गई है। आतंकवादियों ने सेना के काफिले की एम्बुलेंस पर हमला किया था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। हालांकि आतंकवादियों के शव बरामद करने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की राह पर दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है और इसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण, विचारों और संदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्त रूप दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि एकता दौड़ केवल देश की एकता सुदृढ़ करने का संकल्प नहीं है, अब यह विकसित भारत का भी संकल्प बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का स्मरण करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने संगठित भारत की स्थापना के लिए विभिन्न रियासतों को एक सूत्र में पुरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने में विलंब पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक उन्हें भुलाने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर सरदार पटेल की स्मृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य किया है। गृहमंत्री ने कहा कि रन फॉर यूनिटी देश की एकता और अखंडता के लिए आयोजित की जा रही है। सरकार ने दिवाली के कारण इसे बृहस्पतिवार के बदले आज आयोजित करने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रन फॉर यूनिटी में लगभग 8,000 धावकों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक प्रतिभागी आयुषी कपूर ने कहा कि एकता दौड़ लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वे इसमें शामिल होकर बहुत ही उत्साहित हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश अवामी लीग और जाति पार्टी सहित 11 पार्टियों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक रिट याचिका आज वापस ले ली गई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार इस याचिका में बांग्लादेश के 10वें, 11वें और 12वें राष्ट्रीय चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी, जिसे आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल अब 2 रिट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने रिट को सूची से हटाने का आदेश दिया। इजरायली नेसेट ने एक कानून पारित किया जिसके तहत निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को इजरायल में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 120 में से 92 संसद सदस्यों द्वारा समर्थित इस नए कानून को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद लागू किया गया है। यह एजेंसी को इजरायली क्षेत्र में कोई प्रतिनिधित्व करने, सेवाएं प्रदान करने या गतिविधियों का संचालन करने से रोकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लेजारनी ने कहा कि एजेंसी के खिलाफ इजरायली संसद द्वारा किया गया वोट अभूतपूर्व और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।